భవసంభవ భీతి భేదనం సుఖ సంపద్ కరుణానికేతనం వ్రతదాన తప క్రియాఫలం సహజానంద గురుం భజే సదా. వర్ణివేశరమణీయ దర్శనం మందహాస్యరుచిరాననాంబుజం పూజితం సురనరోత్తమే ముదా ధర్మనందన మహావిచింతయ తం సుకాంతవృతం కాంతం తం కాంతం సర్వదోగతం తం గతే ద్వేగదేవ తం తం వందే భక్తి కాసుతం. સર્વાવતારી સર્વકારણના કારણ આપણા સૌના મોક્ષદાતા ઈષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય દક્ષિણ વિભાગ અધિષ્ઠાતા દેવ વડતાલવાસી શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવ હરિકૃષ્ણ મહારાજની છત્રછાયામાં જેમના પટાંગણની અંદર આપણે ત્રણ ત્રણ દિવસથી સર્વાવતારી ભગવાન શ્રીહરિના દિવ્ય ચરિત્રોના ગુણાનુવાદ સાંભળી રહ્યા છીએ એવા રાધાકૃષ્ણદેવ ટેમ્પલમાં બિરાજમાન અર્ચા સ્વરૂપ ભગવાન શ્રીહરિના દિવ્ય સાનિધ્યમાં આજના પૂર્ણાહુતિના અવસરે સભામાં ઉપસ્થિત ધર્મકુળ આશ્રિત વાલા સર્વે અમારા સંતો શ્રીજી નલાડીલા ધર્મકુળ આશ્રિત વાલા સર્વે સત્સંગી હરિભક્તો સર્વધર્મપ્રેમી સજ્જનો સર્વ મોક્ષભાગી જીવાત્માઓ સર્વ હરિભક્તોને અમારા હૃદયપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ. આજે ત્રણ ત્રણ દિવસથી ભગવાનના દિવ્ય ગુણાનુવાદોનું શ્રવણ આપણે ટેક્સસ હ્યુસ્ટનને આંગણે કરી રહ્યા છીએ. આપણે ઘણા બધા ભક્તો અહીંયા હિન્દી ભાષી છે એટલે મને થોડું હરિભક્તોએ કીધું છે હિન્દીમાં પણ સમાવેશ કરજો જેથી કરીને એમને પણ ખ્યાલ આવે. જીવન મેં વ્યક્તિ હંમેશા સુખ ઓર શાંતિ કી અનુભૂતિ કે લઈએ એ સંસાર મેં કોઈ એસી કોઈ જગા નહીં હૈ કોઈ એસા કાર્ય નહીં હૈ જો ઉસને નહીં કિયા હોગા લેકિન યદ્યપિ જીવન મેં હર જગા પે શાંતિ અગર મિલતી અગર હર કાર્ય કરને સે સંતુષ્ટિ મિલતી તૃપ્તિ હોતી તો કિસી કા જીવન વ્યથિત યા કિસી કે જીવન મેં ક્લેશ નહીં હોતા. ये बात हमको हमारे जीवन से ही अनुभूत होती है कि सारे कार्य करने के पश्चात भी जब हम आत्मचिंतन करते हैं तो हमें हमारा जीवन क्या मूल्य हमको दिया है, हमारे जीवन ने हमको क्या प्राप्ति कराई है, इसका विश्लेषण करना मुश्किल हो जाता है. इसीलिए शास्त्रों ने धर्म संबंधी जो कार्य है, भगवत कथा श्रवण आदि जो कार्य है, उसकी महत्वता बताते हुए कहा है कि जहां पे संसार की अपेक्षा, संसार की जो हमारी लालसा है, हमारी कामनाएं हैं, वहां पूर्ण होती है, वहां से आगे हमारी सोच नहीं जा सकती, उससे आगे हम कार्य भी कर नहीं सकते उसको पाने के लिए, फिर भी जो हमारी हृदय की, जो हमारी मन की स्थिति है, उसमें जो जो अपूर्ति है वो पूर्ण करने के लिए धर्म का आश्रय अनिवार्य है, भगवान का आश्रय अनिवार्य है. और ऐसा आश्रय जीवात्मा को दृढ़ हो, प्राप्त हो, उसके लिए हम ये सब कार्य, जो हमारी ये उद्यम है, ये सब उसी लिए होता है. याज आनंद की बात है कि यहाँ तीन दिनों से भगवान के चरित्रों का गुणानुवाद हम लोग श्रवण कर रहे हैं. वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण ने एक बात बहुत सुंदर समझाई है. भगवान का महिमा एक विशाल समुद्र की तरह है. जिस पक्षी की जितनी चोंच होगी वो समुद्र में से उतना पानी ग्रहण करेगा, उससे न समुद्र को कोई उसके असर होने वाला है, समुद्र में से पानी कम नहीं होगा, लेकिन उस पक्षी की तृप्ति जरूर होगी क्योंकि अपनी योग्यता अनुसार उसमें उसमें से उसने ग्रहण किया है। यही बात हमको हमारे धर्मशास्त्र समझाते हैं कि परमात्मा का जो महिमा है, एक नंद संतों ने हमारी पंक्ति लिखी है जो हम लोग स्तुति में करते हैं, जेने शेष सहस्त्र मुख गाए, जो शेष नारायण है जिसके सहस्त्र मुख हैं और उसी सहस्त्र मुख से भगवान के गुणानुवाद का गान करने के बावजूद भी निगम नेति कहे, वेद आदि पुराण आदि उपनिषद आदि भगवान के महिमा से भरे होने के बावजूद भी उसका अंत नहीं है, ऐसा शास्त्र का विधान है। ये सागर को गागर में समाने का कार्य हमारी गगरी में, छोटी सी गगरी, 3 दिन का अवसर हमको मिला था। इस 3 दिन के अंदर परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण, भक्तों इस संसार में सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति की ये मान्यता है, सर्व समर संप्रदाय मान्य है कि संसार में 3 सनातन तत्व हैं, जीव माया परब्रह्म। ये जीवात्मा की गति परब्रह्म में हो, सारे हमारे जो सनातन वैदिक जो संस्कृति से अनुसरते हुए जो संप्रदाय हैं, विशिष्टाद्वैत मत अनुसरते हों, चाहे शुद्धाद्वैत अनुसरते हों, द्वैताद्वैत अनुसरते हों, निम्बार्क मधु आदि अनेक संप्रदाय हमारे भारतीय संस्कृति के वैदिक परंपरा से निकले हैं, लेकिन सारों संप्रदायों की ये मान्यता अवश्य है कि जीवात्मा की माया के रूपी आवरण, माया रूपी अवलंबन से पाप मुक्त होकर परमात्मा के अंदर गति हो, यही हमारा उद्देश्य है और इसी को मुक्ति कही गई है। जगत में सुखी होना ये मुक्ति नहीं है। मुक्ति की व्याख्या देखिए शास्त्रों ने बहुत स्पष्ट रूप से समझाई है। मुक्ति केवल सुखी होने को मुक्ति नहीं कहते। किसी को अच्छी पुत्र पौत्रादि प्राप्त हो गए, किसी को धन संपत्ति प्राप्त हो गई, किसी को जगत के यश वैभव प्राप्त हो गए, तो इसको मुक्ति नहीं कही है, इसको सुखी भी नहीं कहा गया शास्त्रों में। ये तो कर्म के फल है, जो जीवात्मा अपने कर्म फलों से फल अनुसार वो अपने भोगता है। लेकिन जब ये कर्म के बंधन से मुक्ति हो, जीवात्मा को जन्म मरण के बंधन से जीवात्मा की मुक्ति हो, उसको पुनः गर्भावास और मृत्यु के शरण में न जाना पड़े, ऐसी जब स्थिति जीवात्मा की होती है उसको, और सिर्फ उतना नहीं, उसके साथ उसको परमात्मा के परम चैतन्य तत्व की प्राप्ति होकर परमात्मा के सुख के वो अथाग सागर में जब वो एक रूपता से, भावात्मक रूप से, शरीरात्मक रूप से, अपने इंद्रिय मन बुद्धि के रूप से भी परमात्मा मय हो जाता है, उसको शास्त्रों ने मुक्ति कही है। और इसी को बहुत वचनामृत में भगवान ने बहुत सरलता से समझाया है। कोई कहता है कि भगवान मय होना मतलब भगवान हो जाना नहीं, क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मोक्ष की अपेक्षा साधर्म्यपणा, ऐसे जो अलग अलग मोक्ष की जो व्याख्या में उसके उद्देश्य बताए हैं उसमें एक होता है साधर्म्यपणा, तो जो भगवान के समधर्म की उसको प्राप्ति होती है, भगवान जैसे ऐश्वर्य को, भगवान जैसे गुण को वो प्राप्त करता है। वचनामृत में भगवान ने ये बताया है कि व्यक्ति अगर भगवान का यथार्थ महिमा समझ के जिस महिमा से भगवान की भक्ति करेगा, इस देह का त्याग करने के बाद जब वो ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करेगा, तो जिस भाव से, जिस महिमा से भगवान की सेवा की है, उतनी सामर्थ्य तो वो जीवात्मा में आ जाती है। आप समझिए मैं जो कहने चाह रहा हूं, मैं जो बताने आपको जा रहा हूं कि जो हम कर रहे हैं, जिस परमेश्वर की, जिस परब्रह्म परमात्मा की हम उपासना की बात कर रहे हैं, जिस भगवान को हम पाने की बात कर रहे हैं, वो परमात्मा की बड़ाई जो है वो कितनी है, कितने बड़े हैं, उनकी इनकी सर्वोपरिता क्या है, अगर ये समझनी हो तो आप ये समझिए कि अगर सामान्य भक्त भगवान की भक्ति करने से जैसा महिमा भगवान का, जितना बड़ा महिमा भगवान का समझ के भक्ति की है, उतनी सामर्थ्य तो वो जीवात्मा में आ जाती है, वो उतना बड़ा तो वो जीवात्मा हो साधर्म, क्योंकि मोक्ष की है वो परिभाषा है। तो ऐसी हमारी संस्कृति हमको बताती है, फिर भी भगवान स्वामीनारायण ने कहा है वो स्वामी है और हम सेवक हैं, यही हमारे विशिष्ट अद्वैत मत की परम सिद्धांत की परंपरा है कि ये करने की ये स्थिति पाने के बावजूद भी तत्र कृष्ण सेवा मुक्तिश्च गम्यताम, शिक्षा पत्र में भगवान ने लिखा हमारी सेवा, हमारी जो भक्ति है वो विराम नहीं होती, वहां जाके भी, यहाँ जो करते हैं वो भी भक्ति है, वो जो सेवा परायणता है वो भी भक्ति का स्वरूप है, और परमात्मा के धाम में जाने के बाद, भगवान के मय हो जाने के बाद, अंतरकर्म मन मन से भगवान के लीन हो जाने के बावजूद भी भगवान के दासत्व भाव में रह के भगवान की भक्ति करना, यही हमारा परम लक्ष्य है। वही भगवान की प्रसन्नता का हेतु है और वही भगवान की कृपा हमारा पारितोषिक है, वही भगवान की जो हमारे पे अनुकंपा हमारा पारितोषिक है। ये स्थिति को, ये हमारे सिद्धांत को जीवंत रखती हमारी संस्कृतियाँ। और जैसे हमने बताया, आज हमने भगवत की कथा में, भगवान के चरित्रों में भगवान की महिमा समझने के लिए कहा। एक बहुत छोटा प्रसंग हमारे संप्रदाय में ब्रह्मानंद स्वामी के जीवन से जुड़ा है। ब्रह्मानंद स्वामी जब लाडूदान मतलब पूर्वाश्रम में जब उनकी दीक्षा नहीं हुई थी तो भगवान की परीक्षा करने के लिए आए। ये प्रसंग हमारे शास्त्रों में सब वर्णन बहुत विस्तार से वर्णित किया है। लेकिन जब भगवान के परीक्षा करने के लिए आए कि भगवान वास्तव में कलयुग में भगवान का अवतार, भगवान का प्रागट्य कैसे होता होगा, और यही यद्यपि कोई अगर अपने आप को भगवान कहता है तो कहीं ये कोई कपोड़ कल्पित बात तो नहीं है, केवल कहीं झूठ और कहीं पाखंड तो नहीं प्रसरा रहे हैं। यही परीक्षा करने के लिए उनका नाम, बहुत बहुत शीघ्र कवि थे, बहुत विद्वान कवि थे, पिंगल शास्त्र के महान ज्ञाता थे। और ऐसे लाडूदान जी ने जो भगवान की परीक्षा के लिए जब गढ़पुर आने का प्रसंग हुआ, हमारे शास्त्रों में वर्णन किया है, तो उन्होंने मनोमन तीन संकल्प किए कि अगर भगवान है तो भगवान का एक गुण है कि अंतर्यामी, एक उनका एक स्वभाव है, एक उनका ऐश्वर्य है, वो मन की जान लेते हैं, तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, वो परमात्मा है तो हमारे ये संकल्प जान लेंगे और अगर परिपूर्ण करें तो हम मान लेंगे परमात्मा है। और उन्होंने तीन संकल्प किए कि भगवान इस मुखारविंद के इस सन्मुख करके बैठे हों, सामने भागवत की कथा हो और महाराज हमको नाम लिखे वगैरह वगैरह, गुलाब का हार भगवान के कंठ प्रदेश में हो, ऐसे उन्होंने संकल्प किए। और जब वो गढ़पुर पहुँचे भावनगर से तो भगवान ने उसी स्वरूप में उनको दर्शन दिया, उनको नाम देके, पहली बार मिल रहे थे लेकिन नाम देके उनको बुलाया। तो ये जब भगवान का दर्शन उनको हुआ, उनको प्रतीति हुई कि परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण है। और उन्होंने एक अपने जो प्रथम पंक्ति भगवान के सेवा में अर्पित की वो ये है कि आजनी घड़ी रे धन्य आजनी घड़ी। उन्होंने गुजराती पद है कि मैं निर्ख्या सहजानंद धन्य आजनी घड़ी। आज की हमारी घड़ी बहुत धन्य हो गई है। क्यों? क्योंकि हमने परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण के हमने दर्शन किए हैं। ये दर्शन का फल क्या है, आगे पंक्ति में बहुत सुंदर उन्होंने वर्णन किया है, काम क्रोध लोभ विषय नाश के नड़ी। ये परमात्मा की जो हम क्यों भगवान को हम चाहते हैं, क्यों भगवान की भक्ति करते हैं, ये उद्देश्य हमारा, हम कल परसों हमारे युवा हरिभक्तों के साथ बैठे थे तो हम उनको यही समझा रहे थे कि हम सत्संग में क्यों आते हैं, हमारे भक्ति का हेतु क्या है, हमारे धर्मपरायण होने का हेतु क्या है। व्यक्ति हमेशा अपने स्वार्थवश जब दृष्टि से देखेगा, देखिए सुखी होने का संकल्प करना, किसी चीज वस्तु की तमन्ना रखना, ये कोई गलत नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन यद्यपि ये हेतु हो जाता है तो आपकी दृष्टि बदल जाती है, और जब दृष्टि बदल जाती है तो आपका उद्देश्य बदल जाता है, आपका कार्य बदल जाता है और परिणाम स्वरूप उसकी फलश्रुति भी बदल जाती है। जब आपका हेतु ही आपका भौतिक है, आपका हेतु ही नाशवंत है, तो निसंदेह उसका परिणाम भी आपको नाशवंत ही मिलेगा। और यद्यपि यही भाव आपका यद्यपि अविनाशी के उसमें हो जाता है, देखिए इसलिए इन्होंने लिखा काम क्रोध लोभ विषय, ये सारे जो अंतःशत्रु है, ये बाह्य शत्रु है जो जीवात्मा के मोक्ष मार्ग में बंधन रूप करने वाले हैं, उसमें दुविधा या उसमें अवरोध करने वाले हैं, ऐसे जो विषय हैं उसको टाल के भगवान की स्वरूप में पाने की हमारी जो तमन्ना है वो कैसे होगी, जब इनका हम ये सारे अवरोध को हम दूर कर पाएंगे अपने जीवन में से, ये सारे अवरोध के हम उससे पर हो पाएंगे तभी भगवान के स्वरूप में हमारी। और यही भगवान की उन्होंने प्राप्ति का हेतु बताया, हमको समझाया कि जब परमात्मा, तो इसीलिए हमने कहा कि हमने जैसे अभी मदन मोहन ने कहा कि मंदिर का निर्माण, तो मंदिर का निर्माण हमारा हेतु है कि उससे भगवान की प्रसन्नता प्राप्त हो। हमारा यही उद्देश्य है कि ये मंदिर केवल हमारी भक्ति के लिए हमको उपयोगी हो, यहाँ जो मंदिर निर्माण हो वो धर्म की ऐसी स्थल वो बने, वो वहाँ पे जैसे महाराज भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत में बताया कि जहाँ जाने से मनोमय चक्र की धारा कुंठित हो जाए, उसे नैमिषारण्य तुल्य क्षेत्र का आप जानिए कि वहाँ जाने के बाद मन के सारे विकार, मन की सारी दुविधाएं, मन के सारे जो हमारे प्रश्न है, जो हमारी तीव्रताप है, उससे हमारा जो मन व्याकुल है, वो सारी व्यथा व्याकुलता जहां जाके विराम हो जाए और परमात्मा की मूर्ति भगवान के स्वरूप में हमारा मन एक रूप हो जाए और उसके आनंद में उससे जो हमको ऊर्जा प्राप्त हो, उससे हमारा सरल और सुखीमय जीवन हमारा व्यतीत हो, यही उद्देश्य को लेके ये मंदिर का हमने संकल्प किया है। तो ऐसी जो हमको प्राप्ति हुई है ये भगवान की कृपा से हुई है। और हमने जैसे कहा कि भगवान का महिमा, तो भगवान ने वचनामृत में एक बहुत सुंदर बात लिखी है कि परमात्मा का इस धरा पर जब भी आविर्भाव हुआ है, चाहे अवतार स्वरूप में हुआ हो, हमने भी सुना कला अवतार, अंशावतार, अंशांश अवतार, भगवान के अनेक प्रकार के उस धरा पर आने का आगमन का कारण होता है। कभी धर्म के रक्षण के लिए परमात्मा का अवतार होता है, कभी भक्तों के रक्षण के लिए होता है, कभी अधर्म के नाश के लिए, कभी असुरों के नाश के लिए। एक हमारे संप्रदाय की एक बहुत बड़ी प्रसंग की एक कथा हमारे शास्त्रों में वर्णित की है। भगवान को किसी ने पूछा कि न आपने गोवर्धन तोला है, न आपने सेतु बांधा है, न आपने रावण और कंस जैसे असुरों का हनन किया है, आपको हम परमात्मा फिर कैसे हम मानते हैं। भगवान ने स्वयं ये प्रश्न पूछा कि हमने तो ऐसा कोई ऐश्वर्य का दर्शन नहीं कराया। तब नंद संतों ने कहा कि भगवान अवतार के स्वरूप में तो आपने जो लीलाएं की वो तो एक क्षणिक और सीमित थी। वो अवतार एक अवतार जिस हेतु के लिए प्रयोजन से जो अवतार धारण किया था, वो प्रयोजन उस अवतार के हेतु के तत्व उसके सीमा में आपने किया, लेकिन वो सारे का सारे जो निमित्त थे, जैसे रावण के अंदर जो रावणत्व था, उसका असुरीपन जो था, वो अंतशत्रु के रूप में जो सारे जीवात्मा के अंदर है, वो काम क्रोध आदि अंतशत्रुओं का आपने नाश किया है आपने। और केवल नाम स्मरण से आपने, मैं तो आपको एक प्रसंग बताऊं कि ब्रह्मानंद स्वामी जैसे सब भगवान के एकांतिक संत, जब जूनागढ़ नवाब ने उनकी सवारी निकाली, प्रसंग बहुत विस्तार से है, किसी ने द्वेष भाव से एक कामातुर घोड़ी जो थी उसको भगवान के सामने उनके स्वागत के लिए भेजी, और जब वो भेजी तो भगवान को उस पर विराजमान करके था यही उद्देश्य उसका कि अगर भगवान उसके ऊपर बैठेंगे और वहाँ पे उनकी जो शोभा यात्रा है उसमें विघ्न आएगा। लेकिन जैसे भगवान के संत, भगवान ने समझ गए कि ये है, और ब्रह्मानंद स्वामी ने जाके उसके कान में स्वामीनारायण शब्द कहा तो उसका काम पूरा निकल गया, उसमें ऐसे शास्त्रों में उसका वर्णन आता है। तो ये ऐसे प्राणियों के अंदर भी, मनुष्य के अंदर तो चैतन्यता आई, ऐसे जीव प्राणी मात्र, एक हमारे राजकोट में अगर किसी ने दर्शन किया हो तो गुजरात में एक स्थान है राजकोट, वहां पे एक वृक्ष है, वहां राजकोट में एक बेर का एक वृक्ष है और बेर के वृक्ष में कांटे होते हैं, ये आप सब जानते हैं। एक प्रसंग ऐसा हुआ, भगवान स्वामीनारायण वहां पे अपने संतों के साथ पधारे थे और उस बेर के वृक्ष के नीचे बैठ के उन्होंने सभा की, कथा की, और उसके बाद जब उठने लगे तो भगवान के साथ गोपाळानंद स्वामी थे, और गोपाळानंद स्वामी जैसे संत साधु लोग सर पे रुमाल बांधते हैं ना, वैसे उन्होंने रुमाल बांधा हुआ था। तो जैसे उठने लगे, उनकी थोड़ी हाइट लंबी थी, तो बेर के जो कांटे थे वो उनके पाग में, उनके रुमाल के अंदर, वो कपड़े के अंदर फंसा गया और उससे कपड़ा फटा। तो सहज रूप से गोपाळानंद स्वामी के मुंह से शब्द निकल गए कि अरे मूर्ख, परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण तेरी छत्र छाया में, तेरी छाया के आके नीचे आके विराजमान हुए, और तुझे इतना भी नहीं हुआ, तूने अपना कांटे वाला स्वभाव छोड़ा। और इतना कहने के साथ वो बेर के वृक्ष ने अपने सारे कांटे अपने छोड़ दिए, त्याग कर दिए। आज 200 साल हो गया, वो बेर वृक्ष वहीं पे, आज वो स्थान वहां पे भगवान का, लक्ष्मीनारायण देव का दिव्य मंदिर है, और वो बोरड़ी वाला मंदिर, मतलब बेर वाला मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो मनुष्य तो जीवात्मा परमात्मा के योग में आने से उनके अंदर तो परिवर्तन आया, ये तो एक सहज स्वभाव प्रकृति का हो सकता है, लेकिन पशुओं में और पेड़ों में भी ऐसे परिवर्तन भगवान के योग से आए, ऐसे ये सर्वोपरि संप्रदाय की ये कैसी। तो ये सारी जो चीजें हैं, हम केवल कहते हैं, हम कभी ये हरिकृष्ण महाराज या जो हमने मूर्ति का, हमने अचरजकारी मूर्ति, ऐसी मूर्ति दूसरी नहीं है, त्रिभुवन में नहीं है, ऐसी भगवान श्री हरि ने हरिकृष्ण महाराज वड़ताल में स्थापित किए है। हम किसी हरिभक्त के यहाँ पदरामणी में गए थे तो हमने उनको बताया कि ये मूर्ति की जो महिमा है ये है कि यहाँ पे जब भगवान के बड़े भ्राता रामप्रताप भाई जब वड़ताल आते थे तो ये मूर्ति में से प्रकट होके बोलते थे। तो हमने कहा वही है कि मूर्ति आज भी वही है, बस केवल हमारी श्रद्धा राम प्रताप भाई जैसी हम कर दें, अगर भगवान के भाई जो राम प्रताप भाई की आत्मीयता भगवान के प्रति थी, अगर हमारी श्रद्धा उस पराकाष्ठा तक पहुंच जाए तो हमारे साथ भी मूर्तिमंत बात करें, क्योंकि मूर्ति तो वही है जो बोलती थी जो चलती थी। तो ये भगवान के साथ हमारा भाव एकात्म भाव का जोड़ने का कार्य ये हम सत्संग द्वारा करें, और हमारे जो मंदिर का संकल्प है भगवान श्रीहरि उसमें अपने कृपा से उसको जल्दी पूर्ण करें, और जिन जिन भक्तों ने ये मंदिर के सेवा कार्य में अपनी यथाशक्ति तन मन धन से सेवा की है उन सारे भक्तों को हम हृदय से खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। भगवान आपको खूब ऐसी इस शुभ कार्य का फल आपको प्रदान करें, और ये जिस स्थान पे हम 3 दिन से कथा का श्रवण करते हैं ये राधा कृष्ण देव टेम्पल, उसके भी सारे जो आयोजक समिति के लोग हैं और जिन्होंने हमको ये आज ये 4थी बार हमारा यहाँ पे आना इस स्थान में हमारा ये हुआ है, हमको भी बहुत प्रसन्नता होती है, और इनकी ये स्थान की भी प्रगति हो, और इन सबको भी हम हृदय से खूब खूब आशीर्वाद और धन्यवाद देते हैं। भगवान श्री हरि के चरणारविंद में प्रार्थना करते हैं कि टेक्सास ह्यूस्टन में हमारे मंदिर के कार्य में खूब वेग से कार्य हो, और अनंत जीवात्मा भगवान की भक्ति में अपना जीवन करके अपने आत्मा का श्रेय करे, यही भगवान श्री हरि के चरणारविंद में प्रार्थना करते हुए परम पूज्य सनातन धर्म धुरंधर आचार्य श्री अजेंद्र प्रसाद जी महाराज, अशोक आदिवाला पूज्य मातुश्री और हमारे समस्त धर्मकुल परिवार की ओर से आप सबको अनेकों अनेक शुभकामनाएं आशीर्वाद देते हुए हम अपने वाणी को विराम करते हैं। सहजान स्वामी महाराज।